अवलम यतफक्करु, क्या इन्होंने गौर नहीं किया? क्या इनको गौर करने की आदत नहीं रही? तफक्कुर नहीं करते, किस पे करना है सबसे पहले? फी अनफुसिहिम, अपने बारे में, अपने नफ्सों पे गौर नहीं करते? अपने दिल में, अपने जी में बजाहर सवाल है लेकिन असल में डांट है। करो, क्यों नहीं करते? गौर किया करो, तफक्कुर करो अपने नफ्सों पे, अपने बारे में कि हो क्या, कहाँ से पैदा हुए, क्या थे कल तक तुम, आज क्या बने फिरते हो और कल तुमने बन क्या जाना है? देखिए, आगाज और अंजाम में सिर्फ दुनिया और आखिरत का ही तकाबुल नहीं है। दुनिया में देख लें कि एक बच्चा बूढ़ा होने तक कितने मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता है और किस तरह से अल्लाह ताला उसको मुख्तलिफ मराहल से गुजारते हैं। गौर करो, तुम्हारी खुराक जो तुम खाते हो कहाँ जाती है, कौन इसको मैदे में जाके बांट रहा है, कौन इसका पानी अलग कर रहा है, कौन ग्लूकोज को अलग करता है, कौन फैट को अलग करता है, कौन सा हिस्सा खुराक का तुम्हारा बालों में बदल रहा है, किससे स्किन बननी है, किससे आंखें खूबसूरत होनी है, किसकी कमी है, कहाँ विटामिन कम है, सुनी सुनी बातें करते हो। बताओ ये सब कर कौन रहा है? बताओ जरा कौन है? आप देखिए, अगर ये कह दिया जाता ना करो, यानी अवलम या तफक्करू की जगह अगर ये कहा जाता ना कि फिक्र करो, गौर करो, तो थोड़ी सी सख्ती आती। किसी को ये कहना काम करो, इसके बजाय ये कह दें ये क्यों नहीं करते, ज्यादा अगले को पर अच्छा असर डालता है। मा खलक अल्लाहु समावाती वल अर्दा, जो पैदा की अल्लाह ने आसमान और जमीन, व मा बैनहुमा, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, इल्ला बिल हक, हक के साथ पैदा किए हैं, कोई झोल नहीं है, ठीक ठाक सीधे तरीके से। अदम से वजूद में लाया तो खल्क हुई, ईजाद फिर इब्दा फिर खल्क, और अल्लाह ताला ने इन सब को बनाया हक के साथ। हक से क्या मुराद है? मकसद। कुरान पाक में जहां भी जमीन व आसमान के बारे में हक के लफ्ज आते हैं ना, तो इससे मुराद मकसद है। बेकार नहीं पैदा किया। सूरत मोमिनून की आयत 115 में हम पढ़ चुके, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या हमने तुमको अबस पैदा किया, बेकार पैदा किया? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम हमारी तरफ लौट कर ना आओगे? सूरत स्वाद की आयत 27 में भी आता है, वमा खलकना समावाती वल अर्दा बातिला, हमने जमीन व आसमान को बातिल तो नहीं पैदा किया? ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफरू, ये तो काफिरों का गुमान हुए कि दुनिया 4 दिन की मौज करो, मस्ती करो। सूरह दुखान आयत 38 में भी इसी किस्म की बात आती है। इसके बरक्स सूरत आल इमरान के आखिरी रुकू में हम देख चुके कि उलुल अलबाब अक्लमंद क्या कहते हैं, रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला, ए हमारे रब, तूने ये सब बातिल नहीं पैदा किया। सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, तू पाक है, हमें आग के अजाब से बचा ले। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बताओ ये ऐसे ही पैदा किए? नहीं, हक के साथ किया। वाजले मुसम्मा, और एक मुद्दत तक। कि अजले मुसम्मा क्या बता रही है? मौत, कि तुमने चंद दिन के लिए इस दुनिया में रहना है और चले जाना है। कायनात खेल नहीं है, बेढंगा नहीं है, इसमें एक मकसद है, हर चीज़ एक के साथ चली है। बेतुकी कोशिश है, नहीं कि कोई इधर चल पड़ा कोई उधर चल पड़ा। बाज़ लोग काम तो कर रहे होते हैं लेकिन बेतुका करते हैं। कायनात पूरी सिमेट्रिकल दिखती है, इसी तरह हर चीज़ एक वक्त पे रुक जाएगी। अजले मुसम्मा, जैसे इंसानों की मौत आएगी ना, इसी तरह इस कायनात की भी मौत आएगी। ये ज़मीन चलते चलते रुक जाएगी, ये आसमान चलते चलते रुक जाएगा, सूरज चांद सितारे सब काम ख़त्म करेंगे। वाइन कसीरम मिनन्नासि बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफिरून, और बिलाशुबा अक्सर लोग अपने रब की मुलाकात के सख्त मुनकिर हैं। देखिए, अल्लाह कह रहे हैं ये बात, मुशाहदे से तो हमें भी दिखता है। अल्लाह ताला हमें ही हिदायत दे दे, हमें तो अपने अमलों से ये दिखता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो बात अल्लाह फरमा दे वो सच होगी कि झूठ? 4 दिन की दुनिया, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया, 4 दिन की चमक दमक, फ़ानी लज्जतें, इतने मस्त, और इस कायनात के इंजाम और इसकी हकीकत से गाफिल। कभी गौर करो, ये राज खुलें तुम पे, तुम तदब्बुर करोगे, तुम्हें तुम्हारा रब दिखेगा इन चीज़ों के अंदर, उसने क्या कुछ पैदा कर दिया। लेकिन तुम गौर थोड़ा करते हो, तुम्हें इसकी फिक्र ही थोड़ी है, तुम्हें ये गम है कि हम दुनिया में कामयाब हो जाए। मैं कहती हूँ सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े में पनपने के लिए, वहां अपने आप को फिट करने के लिए कितने जतन है, वहां की लैंग्वेज आए, वहां जॉब करें, कदम जमें, सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अल्लाह से मुलाकात की कितनी इंतज़ार है। देखिए इस हिस्से पे ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि लफ्ज़ जो लिका होता है ना, ये आमने सामने के मानों में आता है कि एक दिन तुमने अपने रब के सामने आना है, और अक्सर लोग इसका इनकार करते हैं। कैसे? दिन में 5 बार बंदा रब के सामने पहुंचता है, हैया अल सला और हैया अल फलाह की सूरत में। ये जो नमाज है ना, ये अल्लाह ताला से सामना करवाने की एक तैयारी है। आप देखिए कि किसी बहुत बड़े इंसान के सामने जाना हो, चलें इसको आप प्रैक्टिकल देखें, किसी बंदे को स्टेज पे जाना हो, कोई स्पीच करनी है, कोई दर्स देना है, तो पहले क्या करते हैं? छोटी छोटी तैयारियां करते हैं ना, चले आए आप बैठें, ज़रा कुर्सी पे बैठ के बताएं आप कैसे बात करेंगी, आप कैसे बोलेंगी, ताकि आखिरी वक्त पे खौफ ना आए। जिसने कभी भी स्टेयरिंग को वैसे ना पकड़ा हो, वो उसको हाईवे पर डालें तो क्या होगा? नहीं बर्दाश्त करेगा ना। तो अब आप सोचिए कि जो अल्लाह का सामना इस दुनिया में नहीं करता, ना नमाज पढ़ के ना कुरान सुन के, तो बताएं कि क्यामत के दिन उसका हाल क्या होगा। इसलिए फिर वो इनकार कर देते, नहीं, कोई कुछ नहीं होना। अवलम यसीरु फिल अर्दी, क्या उन्होंने नहीं देखा? क्या नहीं उन्होंने सैर की ज़मीन में? फ़यन्ज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, फिर वो देखते कैसा हुआ अंजाम उनसे पहले लोगों का। देखिए सैर तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन गौर व फिक्र वाली सैर सारे लोग नहीं करते। हर बंदे के अंदर डिफरेंट खूबियाँ होती हैं ना। कुछ लोग सिर्फ खा पी के आ जाते हैं, और कुछ रूहानियत को बढ़ा कर आते हैं। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि देखो, ये जो दिलों के अंदर इनकार छुप चुके हैं ना, कुफर और गुमराही की अंधेरी रातें हैं, इसमें फ़िक्र और तदब्बुर के चिराग जलाओ। अपने जिस्म को देखो, ज़ाहरी हाल हुलिये को देखो, कामों को देखो, आसमानों को देखो, और इस कायनात में सैर करते हुए देखा करो कि अल्लाह ने ये सब क्यों पैदा किया। कई फ़कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कैसे हुआ अंजाम उनका जो इनसे पहले थे? कानू अशद्द मिनहुम कुव्वा, वो इनसे ज़्यादा शदीद थे कुव्वत में, ताकत बहुत थी, वो बड़ी ताकतें थी, वो सुपर पावर्स थी। व आसारुल अर्दा, और उन्होंने खूब हल चलाए ज़मीन में। आसार का लफ्ज़ आसारा युसीरु असारतुन, किसी चीज़ को हरकत देने के लिए आता है। ये जो बैल हल चलाता है ना ज़मीनों में, उसके लिए भी यही लफ्ज़ आता है, किसी चीज़ को इस तरह जुम्बुश देना कि गुबार उड़ने लगे। तो आसार क्या हुए? अगली कौमों की छोड़ी हुई निशानियाँ। पिछली कौमें कितनी तरक्की वाली थी, वामरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा, और उन्होंने इसे आबाद किया इससे ज़्यादा जितना उन्होंने इसे आबाद किया। यानी इस ज़मीन पे कोई तुम नए थोड़ी आए हो, मक्का वालों तुम पहले नहीं हो, तुमसे पहले कौमें समूद गुजरी जो पत्थरों में घर बना लिया करती थी, कौमें आद गुजरी जो बड़ी बड़ी यादगारें कायम करती थी, कौमें नूह गुजरी इतनी लंबी लंबी उम्रों वाले थे, तुम किस खेत की मूलियाँ हो? तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो? हर कौम अपने वक्त की तरक्की याफ्ता कौम थी, क्या कुछ नहीं था उन पे। आज भी जो आसार कदीमा होते हैं उनमें जाके देखें तो उनकी तरक्की की दास्तानें आपको दिखेंगी। सनत और हिरफत के मैदान में, पहाड़ों के अंदर से मादनियात निकालने में, नहरें निकालने में, बंद बांधने में, हर जगह उनके काम दिखते हैं। लेकिन हुआ क्या? वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबैयिनात, आए उनके पास उनके रसूल दलीलें लेकर, रोशन निशानियां लेकर। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, पस न थी अल्लाह की ये शान कि वो इन पर जुल्म करता। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन ये खुद ही अपने नफ्सों पे जुल्म करते थे। क्या जुल्म था इनका? वक्त के रसूल को ना मानना। हर कौम का जुल्म यही था। अब आप कहेंगे कि यहाँ सैर की बात है, तो वही बात है कि यहाँ हिस्सी सैर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मानवी सैर तो कर सकते हैं ना, कल्बी सैर। कुरान पाक में जहाँ इन कौमों के किस्से आए, वहाँ सैर कीजिए, गौर कीजिए, जिन बस्तियों में अल्लाह के अजाब आए, इबरत की बात हो, कहाँ क्या हुआ, उनका अंजाम क्या हुआ, आकिबत क्या हुई। आकिबत होती वो है जो अंजाम किसी काम के बाद आता है, ऐसे लोग जो बहुत बड़े बने तरक्की याफ्ता थे, जब अल्लाह ने इनको पकड़ा तो नीस तो नाबूद कर दिया। ये जो लफ्ज़ है ना, फमा कान अल्लाह लियज़लिमहुम, तो जुल्म का लफ्ज़ कमी के लिए आता है, हक तलफी के लिए आता है। जो चीज़ वाजिब हो इसे ना करना, ये जुल्म है। लिखिए ज़रा, जो चीज़ वाजिब हो उसे ना करना। कितने वाजिब चीज़ें हम छोड़ते हैं, तकसीरुल वाजिब, इसको जुल्म कहते हैं अरबी में। हराम को करने को भी जुल्म कहते हैं, लिमिट्स को पार करना। अल्लाह के हक में, बंदों के हक में कमी करने वाला जालिम है। अल्लाह ताला कहते हैं इन लोगों का इंजाम क्या हुआ, थुम्म काना अकीबतल्लज़ीना असाउ सुआ। बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, इसको गौर से देखिएगा तजवीद में, ख़ास तौर पे जब आप इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो तवज्जो से पढ़िएगा। थुम्म काना, फिर हुआ, अकीबतल्लज़ीना, इंजाम उन लोगों का, असा जिन्होंने बुरा किया, असाउ सुआ। अगर ये मुश्किल से लफ्ज़ को आप थोड़ा सा समझें तो जो लफ्ज़ है ना इधर, असुआ, ये इसम तफदील है, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हम अक्सर बात करते हैं अफजल अकमर। लफ्ज़ असल में था सू, बुराई को कहते हैं, सू से बना असवा, असवा से फिर सुआ बन गया, जैसे अहसन से हुस्ना, अकबर से कुबरा। मुराद ये कि जैसा अमल था वैसे ही काम हुआ, बुरे अमल थे इंजाम बुरा हुआ। बुरा अमल क्या था, अन कज़्ज़बू बी आयातिल्लाह, कि उन्होंने झुटला दिया अल्लाह की आयतों को, वकानू बिहा यस्तहज़ियून, और वो उसका मजाक उड़ाया करते थे, खेलते थे, इस पे ऐसी बातें करते थे, ये कैसे होगा, वो होगा, ये नहीं वो नहीं, इस तरह की बातें करते। बड़े मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं इस आयत में, जितने भारी लफ्ज़ होते हैं ना उतना उसका मानी भारी होता है। अल्लाह ताला इस सूरत में हमारे शौर को बेदार कर रहे हैं, और आप फील कर रहे हैं कि जब से 20वां पारा शुरू हुआ है शौर को बेदार करने वाली बातें बहुत आ रही हैं। दो टोक अंदाज है अब कुरान का, क्लियर कट, हुज्जत तमाम, बात हो गई, पहुंच गई, अब तो सिर्फ जहन के अंदर कुछ हथौड़े बरसने हैं ताकि इंसान सोचे, गौर करे, ऐसी चीज़ों का मजाक करके जाना कहाँ है। पिछली कौमों पे बात करने के बाद अब अल्लाह ताला कुछ बातें तख्लीक के बारे में, अल्लाहु यब्दउल खल्का, अल्लाह इब्तदा करता है खल की, सूरत नमल में भी पढ़ चुके 20वें पारे के शुरू में, सुम्मा युईदुहु, फिर उसका इयादा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाउन, फिर इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। देखिए ये है पूरी कहानी। पहली बात है यब्दउल खल्क, ये है इंसान का आगाज, यब्दउ इब्दा, यब्दउ से पहली दफ़ा कोई काम करना बगैर नमूने के, हर जगह अल्लाह ताला ने इसका तذکرہ किया है। सुम्मा युईदुहु, इयादा करना, उर्दू में हम बोलते हैं ना औद, कोई चीज़ पलट के आना, यानी अल्लाह ताला उसको दोहराएगा, रीमॉडलिंग करेगा, आप ये कह लें ये है क़यामत, मरने के बाद इंसान को दोबारा वैसे ही बना देना। अगर आप देखिए कि इब्तिदा पर गौर हो ना और इंतहा पर गौर ना हो तो क्या अंजाम निकलेगा। मसलन आप रोटी पकाएं, तवे पे डाल दें, उतारनी भूल जाएं, क्या अंजाम है, जल जाएगी ना। खाना पकना रखें, उतारना भूल जाएं, गाड़ी में बैठें, गियर डालें, गाड़ी को चलाएं, ब्रेक लगाना भूल जाएं। अल्लाह सिखा रहा है कि देखो जिस बंदे को अपना इंजाम याद नहीं, जिसको अपना इरादा याद नहीं, उसकी तरफ पलटना याद नहीं, तो वो इतने ही बड़े ख़तरे में जितना रोटी को तवे पे डाल के भूलने वाला खतरे में, आग लगने का डर है। उन जिंदगियों को, उन जवानियों को आग लग रही है जो इंजाम से गाफिल है। हकीकत है कि नहीं, इंजाम से गाफिल लोग अपने आप को तवे पे पड़ी हुई रोटी की तरह जलने के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या हाल होगा उस दिन, व यौम तकूमु सात युबलिसुल मुजरिमून, और जिस दिन बरपा होगी कियामत, मुजरिमों की आस टूट जाएगी। अल्लाह अकबर, बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी। अरबी जुबान में जब कोई इंसान लाजवाब हो जाए, इसके पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई दलील ना हो और इस पर हैरत और यास की कैफियत तारी हो, तो अरब लोग कहा करते थे, अबलसर रजुलू इजा सकता, कि ना उम्मीद हो गया आदमी जब वो चुप हो गया और कट गई उसकी हुज्जत और हैरत से वो हैरान है। अल्लाह ताला ने कैसी मंजर कशी की कि टुकर टुकर देख रहे हैं। मिसाल देती हूँ आपको, कोई एक तकरीब थी तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ आम रिवाज है कि थोड़ा सा दीन का टच भी दे लिया जाता है, किसी मौलवी साहब को बुला लिया जाता है, बाकी काम अपनी मर्जी के किए जाते हैं। तो जो वहाँ दीनदार शख्स गए हुए थे उन्होंने वहाँ पे जाकर उसी हॉल में बैठे हुए एक सिंगर लड़के को जो गाने बजाने के लिए वहाँ आया तो उसको बुलाया और उसे स्टेज पे बुला के कहा कि बेटा अजान दो। इस बात को सुनकर वो हैरान हो गया, उसने ना कभी अजान दी थी ना उसको आती थी। वो चला गया तो उन्होंने उस पर बात की कि सोचो कि तुम दुनिया के जो मर्जी तराने गा लो, जो मर्जी बातें करो, अगर तुम्हें एक अजान देनी नहीं आती तो तुम्हारा क्या टैलेंट है। और वो लड़का जिसको ये कहा उसने बाद में जब इस पे गौर किया तो ये चीज़ उसका म्यूज़िक को छोड़ने का सबब बनी और इन्होंने इस मौके को गनीमत समझा। अब यहाँ बात है युबलिसुल मुजरिमून, आप इमेजिनेशन में कुछ ऐसा ही किरदार लाएं, वो लोग क़यामत के दिन स्टेज पे खड़े कर दिए जाएंगे जो सारी ज़िंदगी ज़ाहिर अल हयात दुनिया में थे, तो वो सटपटाए नहीं फिरेंगे। आप आजमा लें, अगर आपने आज तक अपने बेटों से अजान नहीं दिलवाई या उनको कुरान नहीं सुनाया, सीरत नहीं, उनको बुलाएं सबके सामने, घर में दावत है, और उन्हें कहें बेटा आओ सूरत नजम सुनाओ, तो वो यूं टुकर टुकर देखेंगे, एक लफ्ज़ नहीं आएगा। देखिए जो हमारी जिंदगियां गुजर रही हैं, जो इल्म हम अपनी औलादों को और ख़ुद को दे रहे हैं, उसके नतीजे में यहीं की बातें सुनाएंगे ना। तो उस दिन युबलिसुल मुजरिमून, कोई रास्ता नहीं मिलेगा उनको, गुस्सा आएगा तो माँ बाप पे ही आएगा कि हमारी बेइज्जती करा दी, थक रह जाएंगे, दिल शिकस्ता रह जाएंगे, दलाइल इनके ख़त्म, बोलती बंद, जो बोल नहीं सकता वो साकित हो जाएगा। तसव्वुर में लाएं, कब्र से निकलते ही थक, इनके तो तसव्वुर में भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। आज भी आप देखिए कि जब कोई बड़ा शख्स मरता है ना तो उसके जनाजे, ताबूत, हजारों के लोग होते हैं, लोग तारीफें कर रहे हैं, कोई उनको प्रोटोकॉल दे रहा है, अंदर उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ लफ्ज़ मुजरिम पे गौर कीजिए, जब किसी मुजरिम को अदालत में ले जाया जाता है तो उस वक्त उसकी हालत क्या होती है। अब अगली आयतों को इसी शऊर के साथ सुनने की ज़रूरत है। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम, और नहीं होंगे इनके लिए इनके शरीकों में से कोई, शुफाऊ जो सिफारिश करने वाले, वकानु बिशुरकाइहिम काफिरीन, और वो अपने शरीकों के खुद मुनकर हो जाएंगे। खिलाफे तवक्को जब अपनी कब्रों से निकाल कर मैदान मख्शर की तरफ पेश किए जाएंगे, जहन्नुम के शोले लपक रहे होंगे, इनके झूठे माबूदों की आस इनकी टूट चुकी होगी, कोई वहाँ इनका काम नहीं करेगा, सारे ही लोग धोखा देंगे, सारे पीर फकीर, हाफिज़े कुरान, आलिम, शहीद, कोई आज इनकी मदद करने को तैयार नहीं, और ये वहाँ हैरान खड़े हैं किसको बुलाएं। सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं ना, वतक़त्तत बिहिमुल असबाब, इनके सारे रابطे टूट जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। व यौम तकूमु सातु यौम इज़ी यतफर्रकून, और जिस दिन क़यामत बरपा होगी उस दिन वो लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। दुनिया में बड़ी दोस्तियाँ थी, हम तुम्हारे काम आएंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, वहाँ तफरके पड़ जाएंगे, सब कुछ ख़त्म, जो सोचा हुआ था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। बिल्कुल ज़रा इमेजिनेशन में लाएं, मेरा तो दिल ऐसे लगता है कि वो पिछली आयत के साथ चिपक के रह गया। आज इस सबक के एंड पे आप ज़रूर सोचते हुए जाइएगा कि अगर मैं इस कुरान के साथ ना जुड़ी होती तो मेरे इल्म की इंतहा भी तो ज़ाहिर मिनल हयात दुनिया ही थी ना। आप देखिए कि हम सब इधर जो बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की मोहब्बत में बैठे हैं, कभी किसी ने हमसे हमारी दुनियावी डिग्री तो नहीं पूछी, या आप यहाँ आते हैं तो हम तो नहीं आपसे पूछते कि आपने कौन सी डिग्री की, आपने कौन से कोर्स किए। यकीनन आप में खूबियां होंगी और आपकी वो इसमें भी बढ़ रही हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें कि हम सारी डिग्रियाँ रखते हुए इस डिग्री से महरूम रह जाते हैं, और कितने ही मर जाते हैं। किसी के मरने की खबर सुनती हूँ मैं, कहती हूँ हाय आज एक और गया, एक और मर गया, और दुख तब होता है जब अपना मुसलमान कोई किताब के बगैर मर जाता है। इसके पास कोई कुरान नहीं, इसने वो मजा चखा ही नहीं जिंदगी का, इसको वो सच पता ही नहीं चला जिसने एक खूबसूरत रास्ता आगे दिखाना था, जिससे इंसान को अपनी जिंदगी की समझ आनी थी, उसको तो पीछे ही डाले रखा। आगे कुछ अल्लाह ताला ऐसे लोगों का तذکرہ फरमाते हैं, फअमल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती फहुम फी रौदतिन युहबरून। तो वो लोग जो ईमान लाए थे और नेक अमल करते रहे, वो जन्नत के बागों में मसरूर और मोहतरम होंगे। ये जो लफ्ज़ है ना युहबरून, औरतों को तो ये लफ्ज़ बहुत अच्छी तरह समझ आना चाहिए। डेकोरेट करना, सजाए जाने, दुल्हन सजती है ना, तो असल में उसका मेकअप जो होता है वो उसको सजाया संवारा जाता है। पहले लफ्ज़ है रोज़ा। रोज़ा कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पानी भी हो, सब्ज़ा भी हो और खुशहाली के दूसरे असबाब भी हो। इसी की जमा रियाज है, जैसे हम कहते हैं ना रियाजुल जन्ना, यहाँ इससे मुराद जन्नत है। और युहबरून हिब्र से, हा बारा, खुश और मसरूर करना, ज़मीन का खूब पैदावार उगाना, खिब्रुल अर्द कहते हैं। खबरतुन कहते हैं नेमत और खुशहाली को, ख़ास तौर पर वो खुशहाली जो माहौल की रौनक की वजह से हो। आप सोचिए इमेजिनेशन में कोई ऐसा माहौल है जो बहुत सजा हुआ है, फूल भी हैं, वहाँ पत्तियाँ भी लगी हुई हैं, सहरे लटक रहे हैं, हर तरफ से खूबसूरती है ना। यानी जन्नत वाले खुद भी सजे हुए होंगे, अच्छे कपड़े पहने होंगे, उनका माहौल सजा होगा, उनकी चारपाइयाँ सजी होंगी। कभी कोई दुल्हन की मसहरी देखी हो, सुनी हो, तो उसका तसव्वुर ले आए। जन्नत में हर किस्म का हुस्न होगा। तखबीर कहते हैं किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना। हिब्रुल उम्मा कहते हैं इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो को, आपने फरमाया कि ये सुम्मत के आलिम है। बुनियादी तौर पे जो यहूद के उलमा थे ना, उनको खिब्र कहते थे। पीछे पढ़ चुके हैं रुहबान व अहबारुम, वो भी यही लफ्ज़ है। स्याही को भी कहते हैं क्योंकि आलिम स्याही के साथ काम करते हैं ना, इंक के मानों में। आलिम की तहरीर जो होती है ये दिलों को खुश करती है। हैरत नहीं उन लोगों पे जो कुछ नहीं लिखते, जिनके पास कोई इल्म की बात नहीं है। यानी इस एक लफ्ज़ को अगर हम मुख्तलिफ एंगल से देखें तो हमें बहुत कुछ मिलता है। तिलावत सुनते हैं यहाँ तक, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे।
بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر من وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم